टॉपिक दिया गया है उद्धव संदेश। उद्धव जी संदेश दे रहे हैं, लेकिन किसका संदेश दे रहे हैं? उद्धव जी भी उस संदेश को पूरा पूरा नहीं समझ रहे। इतना तो समझ रहे हैं किसका संदेश है, लेकिन क्या संदेश है उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। अब देने वाले कोई पूरी जानकारी नहीं है, तो हम लोग उसको कितना समझेंगे? ये तो अलग अलग लोगों का मन ही बतलाएगा। तो हम लोग कल भ्रमर गीत सुन रहे थे। एक घटना है, विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट शेक्सपियर के कुछ सोनेट को कॉपी कर लिया, उतार लिया सीधे से। सोनेट एक अंग्रेजी का छंद है, और शेक्सपियर बहुत सोनेट लिखा है, तो जो बहुत प्रचलित नहीं था, तो उसमें से दो सोनेट को कॉपी कर लिया और अपने प्रोफेसर के पास ले करके गया कि सर, हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, कुछ सोनेट लिखे हैं, थोड़ा चेक कर दीजिए। ओ, अब प्रोफेसर अब उसमें चेक करने लगे, गलती पर गलती निकाले जा रहे हैं। अंत में कहा, ठीक है, तुम्हारा प्रयास ठीक ही है, गलती तो। इसके बाद वो कहा कि शेक्सपियर का सोनेट है, तब तो वो प्रोफेसर कांप गए। अब उसमें अब हम तो नहीं कुछ गलती निकाल सकते। उसी तरह कल मैं कोशिश किया भ्रमर गीत कवर करने का, और किसके विचार को कह रहा हूं या तो मैं बतलाया नहीं। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो सकता है कि अपना विचार कुछ दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसको जांच करेंगे तो सब है, आचार्यों का भी विचार है। अब प्रमाद बस एक दो शब्द इधर उधर हो गया होगा, तो उसको सुधार करके ग्रहण कर लेना चाहिए। अब 10 श्लोक को आधा घंटा में कवर करना ही कठिन था। अब नाम रखना और संस्कृत पढ़ना तो संभव नहीं था। तो कल तो एक प्रयास किए कि कवर कर दे, आज तो इतना बड़ा पोर्शन है कि प्रयास भी नहीं किया जाएगा। उसमें से कोई कोई बात, कुछ कुछ बात कहेंगे, सब बात नहीं कह पाएंगे। हम लोगों के गुरु महाराज इस कथा को एक बार खटिया कहे। ओ, 7 दिन की कथा थी, और एवरेज 5 घंटा 6 घंटा रोज कथा होती थी, लेकिन एक सप्ताह में उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर दूसरे साल भी इसी टॉपिक को लिया। बहुत बहुत बातें हैं, हम लोगों को तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है बात है कि उसके कई एक स्तर हैं। हम लोग जो भ्रमर गीत सुन रहे थे, तो वह तो महाभाव की स्थिति में चित्र जल्प है, और इसको उद्धव जी सुन रहे हैं। तो अथ उद्धवो निशम्य एवं कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन प्रिय संदेश गोपी हृदम भासत। उद्धव जी इस गीत को, भ्रमर गीत को सुने, और गीत में मुख्य चीज है कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों की जो लालसा प्रकट हो रही है, तो स्पष्ट है कि उनका एकमात्र लालसा है कृष्ण का दर्शन करना। तो शांतोयन प्रिय संदेशर गोपी रिदम अभासत, गोपियों के विकलता को शांत करने के लिए प्रिय संदेश है, जो गोपियों के प्रिय या उद्धव के प्रिय कृष्ण संदेश दिए हैं, तो उस संदेश को कहने लगे। प्रिय संदेश है गोपी रिदम आभासत, और संदेश के साथ गोपियों से इस प्रकार कह, उद्धव जी कह रहे हैं कि अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, गोपियों को संबोधित करके कह रहे हैं कि आप लोगों का अर्थ प्राप्त हो गया, आपका जीवन सफल हो गया, और संपूर्ण लोक में आप पूज्या हैं। वे क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो वासुदेवे भगवती जासम इत्यर्पितम मन, अरे के भगवान में कृष्ण में इस प्रकार जिसका मन अर्पित है, तो वास्तव में वही पूज्य है और वही कृतार्थ है। क्योंकि सिद्धांत दे रहे हैं कि दानव व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयो भी विविधेश्यान्य कृष्ण भक्ति साध्यते। वैदिक शास्त्रों में बहुत बहुत श्रेय का विधान किया गया, श्रेय मतलब मंगल प्राप्त करने वाले साधन, वो दान है। दान का अर्थ है तुला दान, तुला दान का अर्थ है कि तौल करके अपने शरीर के बराबर दान देते, गीता का दान, या कोई कोई तो चांदी सोने का भी दान करते हैं। और कह रहे हैं कि दान व्रत एकादशी इत्यादि व्रत है, या तप है कृष्णचंद्रायन व्रत, और होम है, स्वाध्याय है, बहुत बहुत श्रेय के साधन है, कल्याण के साधन है। लेकिन जो भी श्रेय है कृष्णे भक्ति साध्यते, उसके द्वारा कृष्ण में भक्ति को ही सिद्ध किया जाता है, उसी के लिए सब साधन करते हैं। और आप लोगों का भक्ति पहले से ही है। तो भगवत उत्तम श्लोके भवतिर भी रनुत्तमा भक्ति प्रवृत्तया दृष्ट्या मुनि नाम अपि दुर्लभा, गोपियों के स्थिति को बतला रहे हैं कि जिस भक्ति को प्राप्त करना मुनियों के लिए भी कठिन है, बहुत कठिनता से प्राप्त करते हैं, तो उस भक्ति का प्रवर्तन आप लोग की अनुत्तमा भक्ति, संसार में भक्ति है लेकिन जैसी भक्ति आप लोगों का है, तो वैसा भक्ति, वैसी भक्ति कहीं नहीं पाई जाती, तो विलक्षण लोकातीत सब तरह से ऊपर भक्ति है। और दृष्ट्या पुत्रान पतिन देहान स्वजनान भवनानि च हित्वा वृणीत यूयम कृष्णाख्यम पुरुषम पर, यानी कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सब संबंधों का छेदन करके और कृष्ण का वरण की है, और सर्वात्म भाव धिकृता भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभाग महान में अनुग्रह कृत, सब चीज का त्याग किए हैं और आप लोग भक्ति को प्राप्त किए, सर्वात्म भाव अधिकृत सब प्रकार से भक्ति को प्राप्त कर लिए अधोक्षज में, और ये आप लोगों का विरह है, तो कम से कम हमारे लिए तो यह भी बहुत भारी सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह विरह हम पर बहुत भारी अनुग्रह कर दिया कि आप लोगों का दर्शन हुआ। और ऐसे उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा कर रहे थे, और उद्धव ने गोपिया मानो आक्षेप की कि यही सुनाने के लिए आए हो, हम लोग को प्रशंसा ही सुनाने के लिए हम लोग इसी के लिए बैठी हैं। तब कह रहे हैं कि श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखाव, कि ना ना हम संदेश भी सुना रहे हैं, कृष्ण का संदेश को बहुत सुखकर होगा। यम आदा आगतो भद्रा अहम भर्तु रहस्कर, हम कृष्ण के संदेश को लेकर के आए हैं और जिस संदेश को लेकर के आए हैं तो उसको भी सुना रहे हैं। तो अब उद्धव जी सीधे भगवान की बात को बोल रहे, कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे, और श्री भगवान उवाच, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। जो भगवान संदेश दे रहे हैं और उसको उद्धव जी हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भगवान के शब्दों में कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। कृष्ण कह रहे हैं कि आप लोगों का वियोग किसी भी स्थिति में सब प्रकार से नहीं है, सर्वात्मना सब प्रकार से, सब प्रकार से वियोग नहीं है, या सब आत्मा से वियोग नहीं है, सब आत्मा से। तो आत्मा कई एक होता है, आत्मा कितना है? आए अमर कोश खोलेंगे तो जीवात्मा भी आत्मा, शरीर भी आत्मा, स्वभाव भी आत्मा, मन भी आत्मा, कोई एक आत्मा हो जाएगा ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वात्मना सब आत्मा से वियोग नहीं है, केवल एक आत्मा से, मतलब देह से। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, सब प्रकार से वियोग नहीं है। और करें कि यह हो ही नहीं सकता सब प्रकार से वियोग, यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्निर जलम मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय आत्मनि वात्मनात्मनं सृजे हनुमानुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। भगवान कह रहे हैं कि एक अर्थ में कि हमारा वियोग नहीं है, सर्वात्मना किसी तरह से वियोग नहीं है, और वियोग हो ही नहीं सकता। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा भूतानि भूतेषु, जैसे कोई वस्तु है, घड़ा है, तो भूत से उसका वियोग हो सकता है। अब मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी से उसका वियोग है कभी? भी क्यों वियोग नहीं है? क्योंकि वे घड़ा का उपादान तो मिट्टी ही है। अब मिट्टी से ही घड़ा बना है तो मिट्टी से कभी वियोग नहीं हो सकता। तो भगवान के कहने का आशय है कि हम तो उपादान हैं और परमात्मा रूप से भी अंतर्यामी भी है, तो हमारा वियोग किसी स्थिति में हो ही नहीं सकता, पूरा पूरा वियोग नहीं है, मतलब पूरा पूरा संयोग है, ये वियोग संभव ही नहीं। घड़ा और मिट्टी का वियोग होगा? क्यों नहीं वियोग है? क्योंकि मिट्टी ही उपादान है, मिट्टी से ही घड़ा बना है। तो वैसे ही इस संसार में कोई भी वस्तु है या प्राणी है तो भगवान दो रूप से उसमें अनुस्यूत है, एक तो उपादान है तो वही बने हैं। लेकिन अब एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि अरे भाई ये तो असंगत बात कह रहे हैं कि उपादान और अंतर्यामी ये तो दोनों नहीं होता है। अरे घड़ा में मिट्टी तो उपादान है जरूर, लेकिन अंतर्यामी तो नहीं है ना, ये दोनों कैसे घटित होगा? लेकिन उद्धव भगवान कह रहे हैं कि हम दो रूप से हर प्राणियों के साथ हैं, परमात्मा के रूप में और उपादान के रूप में। तो वियोग तो संभव ही नहीं है, वियोग नहीं है। ओ, अब ऑब्जेक्शन जो है कि भाई जो उपादान है तो वह अंतर्यामी कैसे हो सकता है। तो भगवान इस बात की स्थापना कर रहे हैं कि हम अपने वैभव से, अपने स्वरूप शक्ति से उपादान भी हैं और अंतर्यामी भी है। भगवान स्पष्ट शब्दों में बोले हैं कि सृष्ट्वा अनुविश्य, भगवान रचना भी किए हैं, उनकी शक्ति से रचना हुई है और भगवान उसमें प्रविष्ट है। तो भगवान ही जब हृदय में है और भगवान ही कारण है, तो कोई कोई कहेगा कि भाई कारण तो प्रकृति के उपादान है, ये पंच महाभूत है, लेकिन उसके भी कारण तो भगवान ही है ना। तो अंततः तो उपादान भगवान ही है, तो उनका संश्लेष जरूर रहेगा। तो अब इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन अनुभव के लिए कुछ प्रयास करना होता है। जैसे कोई कोई चीज उपस्थित है लेकिन अनुभव में नहीं आता है, जैसे लकड़ी में आग है लेकिन कोई देख नहीं पाता है और लकड़ी को छू करके भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही अब भगवान तो हैं आपके बुद्धि में, एक अर्थ है कि सर्वात्मन, मतलब देह से तो नहीं संजोग भी हो तो बुद्धि में मन में सब जगह तो है ही है, छाए हुए हैं। अब ये जो सांख्य सिद्धांत लेकर के चले और कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी में आग है उसका अनुभव नहीं होता है, प्रकाशित होने पर अनुभव होता है, तो उसी तरह हम तो हैं सबके हृदय में लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उपाय बतलाया गया है, जब चित्त वृत्ति का निरोध किया जाता है, इंद्रियों को समाहित करके चित्त वृत्ति का पूरा पूरा निरोध करेंगे तब आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो एक तरह से तो भगवान योग की शिक्षा दे रहे हैं ना, ध्यान करने की शिक्षा दे रहे हैं, मन एकाग्र करने की शिक्षा दे रहे हैं। अब इतना सुन करके गोपियां भड़क गई कि किस आदमी का, किस मूर्ख का संदेश लेकर के आए, जो संदेश दिया है वह कितना भारी मूर्ख है, कुछ ज्ञान नहीं है। अब वे डांटने लगे, देख अब एक शब्द आगे मत बोल, थोड़ा विवेक होना चाहिए, अब जितना सुनाया उतना सुना दिया, अब तुम लेकर के लौट जा, आगे बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम इरेलीवेंट बात है। तब उद्धव जी मानो हाथ जोड़कर कह के, ना ना ना, केवल इतना ही नहीं हमारे पास संदेश है, और भी स्टॉक है, अब हम दूसरा चीज सुनाते हैं। तो कह रहे हैं कि यत् तो हम भवती न वै दूरे वर्त प्रियो दृशा मनसा सन्निकर्षार्थम मनन मदनु ध्यान काम हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि अरे देखो, हम तुम लोगों के आंख से दूर हैं, आंख से दिख नहीं रहे हैं, हैं तो वही लेकिन आंख से दूर है। तो आंख से दूर क्यों हो गए, इसका एक पर्पस है, उद्देश्य है कि मनसा सन्निकर्षार्थम, आंख से दूर हुए हैं मन के नजदीक ले जाने के लिए। जब आंख से दूर रहेंगे तो मदनु ध्यान कामया, तब इच्छा होगी ध्यान करने के लिए, तो मन के नजदीक हो जाएंगे। और भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि यथा दूर चरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणाम च न तथा चेत सन्निकृष्ट गोचरे। भाई एक कॉम्बिनेशन है, जो व्यक्ति आंख के नजदीक रहेगा तो मन से दूर हो जाएगा, और आंख से दूर है तो मन के नजदीक रहेगा। बहुत नजदीक रहने पर तो आदमी अनादर करने लगता है, सन्निकर्षो ही अनादर कारण। जो गंगा जी के तट पर है तो गंगा जी को छोड़कर दूसरे जगह स्नान करने के लिए जाते हैं, दूसरे तीर्थ में जाते हैं। तो भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि देखो, हम तुम लोगों के आंख से दूर है तुम्हारे ध्यान को केंद्रित कराने के लिए, मौन से नजदीक जाने के लिए। क्योंकि यथा दूरचरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीण न च तथा चेत सन्निकृष्ट अक्षि गोचरे। भगवान खास करके स्त्रियों के लिए सिद्धांत दे रहे हैं कि आंख के सामने रहने पर उतनी आसक्ति नहीं होती, उस चित्त उतना आकृष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि आंख से दूर हो रहे तो चित उधर खींचता है, और चेतः सन्निकृष्ट अक्ष गोचरे। तो यह सिद्धांत दे रहे हैं, गोपियां कह रही है कि अच्छा सिद्धांत तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये लागू होगा ब्रज में? जहां दे रहे हो सिद्धांत यहां लागू होगा? और तुमको शौक है तो ये सब सिद्धांत ले जाकर के मथुरा में देना, जिन स्त्रियों के साथ हैं उनका प्रेम बढ़ाओ, दूर हो जो करो। अरे ब्रज के विषय में थोड़ा सोचो कि यहाँ तो पलक गिरता है, वो दृष्टि में थोड़ा सा व्यवधान आने पर वो जुग के समान बीतता है, और उस व्यक्ति को तुम शिक्षा दे रहे हो उस स्थान पर। तो ये सिद्धांत ठीक भी हो तो यहाँ तो ये उपयुक्त तो नहीं है। और कह रहे हैं कि मैया वेश मनस कृत्नम विमुक्ता शेष वृत्तियत अनुस्मरंथ माम नित्यम अचिरान माम पश्यत। फिर उद्धव जी कह रहे हैं कि अरे इतना ही नहीं है, और भी संदेश है। तो आप कह रहे हैं कि मुझ में मन को आविष्ट करके और व्यक्ति जल्दी हमको प्राप्त कर लेता है, और इस सिद्धांत के स्थापना के लिए वे एक घटना का उल्लेख करती है, और गोपियों से कह रहे हैं कि तुम लोग तो अनुभव की हो, तुम्हारे सामने की घटना है कि रास नृत्य के लिए जिन गोपियों को मना कर दिया गया, और गोपियां तो आ गई, लेकिन कुछ गोपियों को घर वाले घर में बंद कर दिए, लेकिन वे ध्याना वो ध्यान से कृष्ण का संश्लेष प्राप्त की, और उससे उनका दुख समाप्त हो गया, सुख समाप्त हो गया, सब प्रारब्ध नष्ट हो गया, या जो भी व्यवधान था वो सब नष्ट हो गए, और वे भी रासलीला में पहुंच आए। ये तो तुम लोगों के सामने की घटना है। जब ऐसे कहे कि रोकने पर वे ध्यान द्वारा चिंतन करके हमारे पास आ गई, तो गाढ़ चिंतन करने से, ध्यान करने से हमारी प्राप्ति हो जाती है, तुम लोग भी यहाँ पहुंच सकती। तब तो इस पर गोपियां कुछ टिप्पणी तो नहीं दी, लेकिन अब वो रास लीला का स्मरण आ गया, तो अब गोपियां बोलने लगी। एवं प्रियतमा दिष्टम आकर्ण्य ब्रजोषित ता उच्चु उद्धवम प्रीता सत्संदेशा गत स्मृति। अब इस संदेश को सुन करके ब्रज का ने उरास लीला का स्मरण आ गया, कृष्ण का और गाढ़ स्मरण आ गया। तो गोपी बोलने लगी। अब कई एक चीज बोल रही हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ये उद्धव जी जो संदेश दे रहे हैं, और सर्वात्मना क्वचित, तुम्हारा भगवान बोल रहे हैं भौति नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। आप लोगों का हमसे वियोग सब प्रकार से कभी नहीं है। अब इस वाक्य को तीन स्तर पर समझा जा सकता है। और उद्धव जिस बात को समझ रहे हैं उसके अनुसार तो यही है कि ये पंच महाभूत जैसे हैं तो किसी वस्तु से अलग नहीं रहते, क्योंकि वही कारण है। तो वैसे ही भगवान सबके कारण है, तो वियोग का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा भी अर्थ है, भगवान कहने का आशय है कि सर्वात्मना वियोग नहीं है, सब प्रकार से वियोग नहीं है। अरे देह के स्तर पर वियोग है, लेकिन मन के स्तर पर तो वियोग नहीं है। चित्त में तो हमारा स्फूर्ति हो ही रहा है। और एक तीसरा सिद्धांत निकल सकता है कि भगवान के कहने का आशय है कि सर्वात्मना वियोग नहीं है, तुम लोगों का एक रूप यहाँ है भौम वृंदावन में, तो यही वियोग है ना। तुम लोगों का जो प्रतिरूप नित्य वृंदावन में है, नित्य धाम में, वहां तो साथ में ही है। तो सर्वथा वियोग, सर्वात्मना वियोग नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को। अरे एक रूप से तुम लोग यहाँ उपस्थित हो, तो जिस रूप से यहाँ उपस्थित हो तो उसी रूप से वियोग है। जो नित्य धाम है तो वहां तो वियोग नहीं है। तो ऐसे तीन लेवल का अर्थ हो रहा है। और सबके इस सिद्धांत का उत्पादन इसी ढंग से किया जाए। अब तीन अर्थ आ रहा है, तो तीनों का उत्पादन पीछे के श्लोक, आगे के श्लोक से किया जा सकता है। लेकिन उद्धव जी संदेश तो जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान क्या संदेश दिए हैं और कैसे छिपा करके संदेश दिए हैं, तो उसको उद्धव जी भी नहीं समझ रहे। तो उद्धव जी के स्तर से जो संदेश दिया जा रहा है, तो उसका सार वक्तव्य यही है कि अपने चित्त को निर्विषय करने पर भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। यही सिद्धांत है ना। अपने इंद्रियों को विषय से रोक करके और चित्त को एकत्र किया जाए, निर्विषय कर दिया जाए, तो वहां ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसी सिद्धांत का वे उपदेश दे रहे हैं। तो अब ये जो सिद्धांत है, तो गोपियां इसको स्वीकार नहीं। उद्धव जी के व्यक्तित्व से गोपियां शांति महसूस कर रही, उनको प्रसन्नता है, लेकिन उद्धव का जो फिलॉसफी है तो वह उनको एकदम पसंद नहीं है, फिलॉसफी से एकदम असहमत है। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी आगे कि वे गोपियां प्रीता है, कैसे श्लोक है, एवं प्रिय तमादिष्टम आकर्ण्य ब्रजोषित ता उचुर उद्धवम प्रीता तत्संदेशा गतस्मृति। और कह रहे हैं कि आकर्ण्य जो प्रिय का संदेश है उसको शांत सुन करके प्रीता उचु वे प्रसन्न हो करके बोली। अरे भाई जब सिद्धांत को रिजेक्ट कर रही हैं, उनका और क्रोध ही बढ़ रहा है, तो प्रीता का कैसे अर्थ लेंगे। लेकिन ये भाषा का कुछ अपना पकड़ है, उसका व्यवहार है। इसी से ग्रामर की भी पढ़ाई होती है, यूजेज की पढ़ाई होती है। एक उदाहरण से इस अर्थ को समझिए। जैसे मैं कहूँ, प्रथम दिन यही क्लास हुआ था, एक बात हुई, दूसरे दिन यही क्लास हुआ था, कुछ स्थान का भेद हो रहा है। प्रथम दिन यही क्लास हुआ था, है उसका उत्तर क्या देंगे? नहीं, ये स्थान नहीं था। और इसी बात को कह रहे हैं, दूसरे दिन यही क्लास हुआ था, तो दोनों में अंतर हो गया ना। जब किसी चीज को प्रश्न बना देते हैं तो निगेटिव अर्थ देने लगता है। तो अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रीता उच्च वे क्या प्रसन्न होकर के बोली, मतलब नहीं, वे प्रसन्न होकर के नहीं बोली। इस बात को समझिए, देखिए कितना अंतर हो जाता है। जैसे कोई प्रश्न करे, आर यू गोइंग टू मीटिंग, ये प्रश्न है ना, आर यू गोइंग टू मीटिंग, उसका उत्तर एक शब्द में कोई दे रहा, एस। वो प्रश्न कर रहा है कि आर यू गोइंग टू मीटिंग, एस। तो इसका क्या मतलब, पूछ रहा है कोई मीटिंग है, उसको जानकारी भी नहीं है। और उसी को कह दे आर यू गोइंग टू मीटिंग, एस। अब इससे अर्थ निकलेगा कोई सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, और वही उत्तर दे एस, तो मतलब वो जाने वाला है, तो अंतर हो रहा है ना। तो इसे प्रीता जो शब्द है, तो इसका भी व्याख्या अब सिद्धांत के अनुसार दो लेवल पर करेंगे। तो जो ब्रह्म के ध्यान की बात आ रही है, अब उस सिद्धांत को सुन करके, प्रीता उच्च क्या वो प्रसन्नता से बोली ना। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु इसको स्पष्ट किए हैं। वे कह रहे हैं कि पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात आमारे जोगा ज्ञान कहिला उपाय। ये कुरुक्षेत्र में कह रही हैं चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी के भाव में कह रहे हैं कि पहले तो उद्धव के द्वारा सिद्धांत दिए, और अभी डायरेक्ट हम लोगों से कह रहे हैं जोग ज्ञान कहिला उपाय। योग और ज्ञान यही उपाय बतला रहे हैं अपने प्राप्ति का। तुम्हें विदग्ध कृपामय जान अमार हृदय मोरे ऐसे कहते न जुआ। अरे कोई अज्ञ व्यक्ति ऐसा कहता तो एक बात हुई, आप हम लोगों के स्वभाव को, हमारी स्थिति को, हमारे हृदय को जानते हैं, और आप ऐसे कह रहे हैं बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कि चित्त काढ़ी तोमा हैते विषय चाहि लगाइते यत्न करी नारी काढ़ी बारे। हम लोगों की स्थिति तो यह है कि विषय से मन हटा करके, नहीं आपसे मन हटा करके विषय में लगाना चाहती है, और इस व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं कि मन को केंद्रित करो, मन को भगवान में लगाओ, तारे ध्यान शिक्षा करे लोका हसाइया मारे स्थाना स्थान ना कर विचारे। अब इस व्यक्ति को योग की शिक्षा दे रहे हैं तो उपहास कर रहे हैं, स्थान और अस्थान का विचार नहीं है। मतलब आपको कोई बोलने में टारगेट ग्रुप का पहचान होना चाहिए, तो टारगेट ग्रुप का एकदम पहचान नहीं, कहाँ किससे किससे कैसा उपदेश करना चाहिए, कहाँ कैसा उपदेश करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं। और आगे निकालो, नहे गोपी जोगेश्वर पद कमल तोमार ध्यान करी पावे संतोष। अरे गोपियां कोई जोगी नहीं है कि ध्यान करके संतोष पा जाएंगी। तोमार वाक्य परिपाटी तारे मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोस। कि ये जो उपदेश दे रहे हैं ध्यान करने का, योग सिद्ध करने का, तो इससे गोपियों को संतोष नहीं हो रहा, बल्कि इससे रोष बढ़ रहा। और जो दूसरे भक्त लोग हैं, और गोपियों का कैसे रोष है और कैसे इसका उत्तर दे रही हैं, तो उसको व्यक्त किए। एक भक्त हुए हैं, उनका नाम है जगन्नाथ दास, और उन्हीं को कुछ लोग रत्नाकर भी कहते हैं। तो वे उद्धव जी के इस प्रवचन को सुनी, भगवान के संदेश को सुनी कि जोग करके, ध्यान करके भगवान का संयोग पाया जा सकता है, तो वह कहने लगी, आये हो सिखावन को जोग मथुराते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराऊ न। अरे कह रहे, तुम मथुरा से आए हो संजोग कराने के लिए, तो विविध प्रकार के वियोग की बात क्यों कह रहे हो? या अब एक तो जो सिद्धांत दे रहे हैं, तो उसको गोपी अपने तरफ से, अपने हिसाब से अर्थ ग्रहण करके कह रही है कि आयो हो सिखावन को जोग मथुराते तो पे उधय वियोग के वचन बतराऊ न। कहे रत्नाकर दया करी दरस दिन हो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाऊ न। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि अरे हृदय में दया हो तो दर्शन दो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाऊ न। हम लोग तो अदर्शन के दुख से पहले तपी हुए हैं, और ये सब शिक्षा दे करके जोग का, ध्यान का, और दुखी मत बनाओ। टुक टुक होइ है मन मुकुर हमारो है, चुकी है कठोर बैन पाहन चलाऊ न। अपने स्थिति को बतला रही है कि ऐसा उपदेश देने से और कितना हमारा कष्ट बढ़ रहा है, ने जले पर नमक छिड़कने जैसा। और सिद्धांत दे रही है कि ऐसा उपदेश दिया तो हमारा चित्त रूप दर्पण टूट जाएगा। ये सब सुन करके तो टुक टुक हुई है मन मुकुर हमारो है, चुकी हुए कठोर बन पाहन चलाऊ ना। अरे भूल करके भी ऐसे कठोर वचन रूप पत्थर मत फेंको। कोई शीशा है और उस पर पत्थर फेंकेंगे तो टूट जाएगा ना। कह रहे हैं कि टुक टुक है मन मुकुर हमारो है, हम लोगों का जो मन है तो शीशा के समान है, और ऐसा कठोर वचन रूप पत्थर फेंक दोगे तो यह टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? एक मनमोहन तो बसी के उजारो मोही, हिया में अनेक मनमोहन बसाऊ। कि हमारी स्थिति है कि एक मनमोहन हृदय में बसा तो हमारे आशा रूप लता को वो छेदन कर दिया, सब छिन्न भिन्न कर दिया, और अब ये पत्थर चला दोगे तो हमारा हृदय तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तो कई एक मनमोहन आ जाएंगे ना। सिद्धांत समझ रहे हैं, एक शीशा है, उसके सामने कोई खड़ा है, कितना प्रतिबिंब आएगा? एक। और शीशा का 10 टुकड़ा कर दीजिए तो 10 प्रतिबिंब आने लगेगा। गोपियां कह रही हैं कि ऐसा कठोर वचन मत बोलो, नहीं तो हमारी दुख और बढ़ जाएगी। अरे अभी तो एक मनमोहन है, ये चित्त रूप दर्पण का टुकड़ा हुआ तो अनेक मनमोहन आ जाएंगे, तो उजाड़ डालेंगे। एक मनमोहन से इतना भाव आ रहे हैं कि हृदय ऐसे ही आक्रांत है। हृदय में भगवान के प्रति भाव है और कई एक विरोधी भाव उठने लगते हैं, और वे आपस में टक्कर खाते हैं तो चित्त भी रौंद जाता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे गन्ना का खेत हो और उसमें हाथी लड़ने लगे तो गन्ने की क्या स्थिति होगी? सब ध्वस्त हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के मन में ये भाव का युद्ध चल रहा था। कोई कोई भाव विरोधी है तो वे आने लगते हैं। तो कह रही है गोपी, एक मनमोहन तो बसी के उजारो मोही, अरे एक मनमोहन हृदय में बसा तो उजाड़ ही दिया है हृदय रूप बगीचा को, ये हाथी जैसा है। अहिया में अनेक मन मोहन बसाओ न। अब बहुत मनमोहन को मत डालो, नहीं तो एकदम हृदय ही बर्बाद हो जाएगा, एकदम रौंद देंगे। तो यह रिएक्शन है। उद्धव जी जो संदेश दे रहे हैं, गोपी का यह रिएक्शन, इसका एक बार आवृत्ति कीजिए। आए हो से खावन को जोगा मथुरा ते तोपे, उधो ये भी जोग के बचन बतराओ न।
आए हो सिखावना को जोगा मथुरा ते तोपे, उधो ये भी योग के वचन बतराओ ना।
कहे रतना कर दया करे दरस दीनो, दुख दरी बेको तोपे अधिक बढ़ाओ ना।
कहे रतना कर दया करी दरस दीनो, दुख दरी बेको तोप अधिक बढ़ाओ ना।
आयो हो सिखावन को जोगा मथुरा ते तोपे, उधो ये भी योग के बचन बतराओ ना।
आए हो सिखावना को जोगा मथुरा ते तोपे, उधो ये भी योग के वचन बतराओ ना।
कहे रतना कर दया करे दरस दीनो, दुख दरी बको तोपे अधिक बढ़ाओ ना।
कहे रतना कर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरी बैको तोप अधिक बढ़ाओ ना।
टुक टुक वही है मन मुकुर मारो हाय, चुकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। टुक
टुक
टुक वही
टुक
है मन मुकुर मारो हाय,
चुकी
चुकी
हूँ
हूँ
कठोर
कठोर
बैन
बैन
पाहन
पाहन।
चलाओ ना।
एक मन मोहन तो बसी के वो जारो मोही, हिया में अनेक मन मोहन बसाओ ना।
एक मन मोहन तो बसी का मोही, या मैं अनेक मन मोहन बसाओ ना।
एक मन मोहन तो बसी के वो जारो मोही, हिया में अनेक मन मोहन बसाओ ना।
एक मन मोहन तो बसी का उजारो मोही, पिया मैं आने का मन मोहन बसाओ ना।
में ब्रह्म का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, या परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि हम अहम और मम में फंसे हुए हैं। जो मेन अवरोधी चीज है तो अहम और मम। तो उद्धव शिक्षा दे रहे हैं कि ये सब को हटा करके, और जो आंख कान मन के विषय है उसको निर्विषय करने से भगवान का संयोग हो जाएगा। गोपी कह रही हैं कि ये सब हम लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो एक गोपी कह रही हैं कि नैनने के आगे नीत नाचा, वो कह रही है कि नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। एक हमारी तो यह स्थिति है कि हम नृत्य देखी हैं कृष्ण का, तो हम तो यही चाहती हैं कि जो विषय का संजोग है वो वैसे ही बना रहे, हम तो अपने आंख के सामने उस नृत्य को ही देखना चाहते हैं। और ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे है, और हमारी यही स्पृहा है कि जो अनन्य रस वाले है, रसघन है, तो उन्हीं का स्मरण बना रहे। हम लोग अपने विषय को भुलाना नहीं चाहती। कहे रत्नाकर सो भावना भरिए रहे, जाके चाव भाव हर रचे उरा में अखारे हैं। हम तो चाहती हैं कि वही भावना भरी रहे जो आपस में लड़ रहे हैं, अखाड़ा हमारे चित्त को बना दिए हैं, उठा पटक चल रहा है, तो उस भावना को हम हटाना नहीं चाहती हैं। और ब्रह्मा हूँ भय पे नारी, ऐसे ही बनी रहे जो रहे, तो सहे शीशा बने बैन जो तिहारे हैं। तुम कह रहे हो कि ब्रह्म स्तर को प्राप्त करो, गुणातीत हो, तो हम एक शर्त रख रही हैं कि ब्रह्म होने के बाद भी हम ऐसे ही नारी भावना में रहेंगे, तब तो तुम्हारे बात को स्वीकार करेंगे। और हमारा नारी शरीर खत्म हो जाए, नारी व्यक्तित्व तो खत्म हो जाए, तो किसी भी स्थिति में हम ब्रह्म नहीं बनना चाहते। और ब्रह्म से हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त है कि हमें नारी ही रहना चाहिए, तो सब बात को मान लेंगे। और कह रही है कि यह अभिमान तो गवई है न गए हूं प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे। ये जो अहम और मम दूर करने के लिए कह रहे हैं, तो स्पष्ट सुन लीजिए कि हमारा प्राण भले ही चल जाए, लेकिन इस अभिमान का त्याग नहीं करो, इस अभिमति का त्याग नहीं करो। क्या अभिमति? कि हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे, मैं उनकी हूं और वे हमारे प्रीतम, इसका त्याग हम नहीं कर सकते भले ही प्राण चला जाए। तो उद्धव जो ध्यान करने की शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के संदेश को बोल रहे हैं, उसके प्रति गोपियों का यह रिएक्शन है। इसकी आवृत्ति कीजिए पीछे से। नयन ने के आगे नीत नचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस बारे हैं।
नैनानी के आगे नीत नचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे
है। नैननी के आगे नीत नचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे है।
नैनानी के आगे नीत नचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे है।
कहे रतना कर स्वभावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रच उर में अखारे है।
कहे रतना कर स्वभावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे।
कहे रतना कर स्वभावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रच उर में अखारे हैं।
कहे रतना कर स्वभावना भरिए रहे, जाके भाव रचे उर में आखारे।
ब्रह्म हो भय पे नारी, ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारे हैं।
ब्रह्म हे पैनारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारे
है। यह अभिमान तो गवई है न गए हूँ प्राण, की है वह प्रीतमा हमारे हैं।
यह अभिमान तो गवहिं ना गए हूँ प्राण, अमाउन की है वह प्रीतमा हमारे।
गोपियां कह रही हैं कि भले ही प्राण चला जाए, लेकिन इस अभिमान का, इस अभिमति का हम त्याग नहीं करेंगे कि हम कृष्ण की हैं और कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। यह अभिमान तो गवई है ना गए हूँ प्राण, हम उन की हैं वह प्रीतम हमारे हैं।
अभिमान तो गवई है ना गए हूँ प्राण, हम उन की है वह प्रीतम हमारे हैं।
हम लोग उद्धव के संदेश पर गोपियों का क्या रिएक्शन है, इस पर हम लोग सुन रहे थे। जो और बतलाए कि ध्यान करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, और उदाहरण के रूप में रास के समय की घटना का उदाहरण दिए, उसका उल्लेख किए, तो गोपियों का कृष्ण का विशेष स्मरण हो गया और वे विकल हो करके और कृष्ण के विषय में बोलने लगी, अपने स्पृहा को व्यक्त करने लगी। तो कह रहे हैं कि वे उद्धव के सामने ही अब कृष्ण के लिए पूरा विकल हो गई, उनका पुकार करने लगी। अब इस सब का प्रभाव उद्धव जी पर पड़ा और उद्धव जी गोपियों का संग चाहने लगे, उनके साथ बैठने लगे, और उद्धव जी भी कृष्ण की कथा करते थे। और कृष्ण की चर्चा करने से गोपियों को बहुत शांति मिलती थी। कृष्ण का जो उपदेश दे रहे हैं, खास करके जो प्रथम स्तर पर जिसकी व्याख्या, उससे तो गोपियां जल भून जाती थी, लेकिन कृष्ण के विषय में वार्ता से उनको सुख था। तो कह रहे हैं कि कई एक महीना तक गोपियों को सुखी किए, और गोपियों का उद्धव के साथ जो समय है तो 10-11 महीना का समय भी एकदम एक क्षण जैसा बीत गया। तो कह रहे हैं कृष्णम संस्मारयन् देमि हरिदासो ब्रजौकसा, और गोपियों के विकलता को देख करके उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा करने लगे और अपनी स्पृहा व्यक्त करने लगे। तो कई एक श्लोक में इसको बोले हैं गोपियों के महिमा को, पर बोलते हुए नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का समय तो खत्म हो गया है, तो हम तो एक शब्द भी उससे अब नहीं कह पाएंगे। लेकिन अब इतना है कि नमस्यन जगो, वे गोपियों को नमस्कार करना चाहते, उसी में उसकी महिमा का गान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणा पाद रेणुम भीक्षण स जासाम हरि कथोद्गीता पुनाति भुवनत्रय। ब्रज के इस गोपियों के चरण धूलि का वंदना कर रहा हूँ अभिक्षण सा निरंतर, क्योंकि इनका जो गीत है भगवान को उद्दिष्ट उद्देश्य करके भगवान के विषय में जो गीत गाई है, तो तीनों लोक को पवित्र करने वाला है। और कह रहे हैं कि अथ गोपी रनो ज्ञाप यशोदा नंद मेव च गोपान आमंत्र दासार्यो जासन आरुहे रथम। गोपियों से आज्ञा लिए, नंद बाबा से सहमति लिए, माँ यशोदा से सहमति लिए, और भी गोपों से मंत्रणा करके उद्धव जी जाने के लिए, मथुरा लौटने के लिए रथ पर बैठ गए। तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणय नंदादयो नुरागेण प्रावोचन अश्रुलोचना। जब उद्धव जी मथुरा के तरफ जाने वाले हैं तो सब ब्रजवासी जुट गए, नंद बाबा इत्यादि अब रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रही है, लेकिन कृष्ण के लिए कई एक प्रकार का उपहार दे रहे। और प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे हमको कोई भी कष्ट हो, कृष्ण की स्मृति बने रहे। हम जो भी दान पुण्य किए हैं तो एक ही वर मांग रहे हैं कि कृष्ण में हमारी रति रहे। तो एवं सभाजितो गोपे कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धव पुनरागच्छन् मथुरां कृष्ण पालिता। और इस प्रकार ब्रजवासी उनका सम्मान किए और उद्धव जी फिर मथुरा आ गए। कृष्णाय प्रणिपत्या भक्ति उद्रेकम ब्रजौ कसाम वसुदेवाय रामाय चाग्ये राग्ये चोपाय चोपाय नानी अददात। और ब्रज में आकर के, मथुरा आकर के ब्रजवासियों के भाव को बतलाए, उनके व्यवहार को बतलाए और उनके भक्ति के उद्रेक को बतलाए। और जो भी भेंट अर्पित किए थे सब ला करके निवेदित किए कृष्ण को। तो हम लोग प्रारंभ किए थे तो उद्धव जी को मथुरा से कृष्ण भेज रहे, और उस समय कृष्ण की स्थिति का वर्णन हम लोग सुने थे कि जैं ही जमुना जी में उनको कमल मिला, उसको निकालो तो नहाते जमुना में, तो उसको सूंघ करके कृष्ण के ऐसी स्थिति हो गई कि वे अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। इसके और पीछे नहीं, और पीछे तो वो अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, ठीक से पैर नहीं रख रहे थे, वो मूर्छित होकर के गिर गए थे। और वे उद्धव जी का कंधा पकड़ करके घर गए थे। और उद्धव जी बहुत आश्चर्य कर रहे थे, बहुत आक्षेप भी कर रहे थे क्या, अरे लड़कियों के प्रेम में यह स्थिति, पुरुष होना धैर्य होना चाहिए ना। और इसी उद्देश्य से कृष्ण भेजे, पहले तो गोपियों को संदेश ही देना था, लेकिन उनकी बात सुन करके कृष्ण निर्णय लिए कि इसको भी शिक्षा की जरूरत है। तो जब उद्धव जी मथुरा में लौट करके गए तो ठीक वही स्थिति उनकी हो गई जो उनको आते समय, उनको भेजते समय कृष्ण की थी। तो अब उद्धव जी की क्या स्थिति है, किस स्थिति में रिपोर्ट सौंप रहे हैं और भेंट अर्पित कर रहे हैं, इसका चित्रण किया गया। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नयननी शिथिलता सुहाई है। उद्धव जी जब कृष्ण के पास पहुंचे हैं तो उनका रूप बतला रहे प्रेम मद छाके पग, वे प्रेम के मदिरा को इतना पी लिए हैं, उसे इतना उन्मत्त है प्रेम रूप मदिरा से कि पग परत कहाँ के कहाँ। अब कहाँ पैर रखना चाहिए तो कहाँ पड़ जाता है, शराबी का देखते हैं ना, कांपने लगता है। थाके अंग नयननी शिथिलता सुहाई है, उनका शरीर एकदम क्लांत लग रहा है और आंख शिथिल है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। कहे रत ना कर यो आवत चकात उठो मानस सुधि आता कोई भाव न भुलाई है। अब उद्धव कृष्ण के पास आ रहे हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हैं, और यही लगता है कि किसी भावना में विभोर है, किसी बात को सोच रहे हैं। और धारत धरा पर ना उदार अति आदर सो सारत बहुली निशो आंसू अधिकाई है, और किसी भावना में बिल्कुल विभोर है और उनके आंखों से अश्रु बह रहा है। और उद्धव गोपियों की भावना में है और ये भक्ति का आंसू है, तो उद्धव यह नहीं चाहते कि इसका अनादर, उनके आंख से अश्रु गिर रहे हैं लेकिन हाथ में भेंट है, भेंट की वस्तु है। तो उद्धव जी अपने अश्रु का अनादर नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि पैर पर गिरे या भूमि पर डायरेक्ट गिरे, तो हाथ से तो उसको पूछ नहीं सकते कि हाथ फंसा हुआ है, तो अपने बहुली से ऐसे बांह का जो कपड़ा है तो उसी से अपने आंख को अश्रु को पूछ रहे हैं ऐसे करके। धारत धरापय न उदार अति आदर सो सारत बहुली निशो आंसू अधिकाई है। अश्रु बह रहे डायरेक्ट पृथ्वी पर न गिर जाए, पैर पर न गिर जाए, उस अश्रु के प्रति इतना सम्मान है कि जो कुर्ता पहने हैं तो उसके बाँह से ही उसी से उसको ऐसे पूछ रहा है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंशीवर राधिका पठाई है। वो बहुत भेंट दिए थे तो एक हाथ में उद्धव जी माँ जसोदा के द्वारा दिए गए ताजा नवनीत को मक्खन को लिए और एक हाथ में राधा रानी खूब सुंदर बर बांसुरी, खूब सुंदर बांसुरी दी है तो उसको लिए है, कृष्ण को देना है। अब दोनों हाथ फंसे हुए हैं और गोपियों के भावना का स्मरण करके अश्रु आ रहे हैं तो अब ऐसे बाँह से ही पूछ रहे। तो हम यह कहना चाहते हैं कि कृष्ण अपने मिशन में सफल रहे। उद्धव जिस चीज के लिए आक्षेप कर रहे थे अब उसी स्थिति में वे पहुंच गए। तो इसका भी एक बार आवृत्ति कीजिए। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है।
प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई।
कहे रत न करो आवत चकात उध मन सुधे यात को भावना भुलाई है।
कहे रत न करो आवत चकात उध मन सुधे यात को भावना भुलाई है।
धारत धरापना उदार अति आदर सो सारत बहुली निज आस अधिकाई है।
धारत धरापना उदार अति आदर सो सारत बहुली निज आस अधिकाई है।
धारत धरापना उदार अति आदर सो सारत बहुली निज आस अधिकाई है।
भारत धरा पैना उदार अति आदर सो सारत बहुलो निज आस अधिकाई है।
एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है।
एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई।
एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है।
एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई।
इस प्रकार उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर के आए। नंद बाबा यशोदा मैया को सुखी करने का प्रयास किए, गोपियों के विरह को कम करने का प्रयास किए, और उनके कई एक संदेश है गोपियों पर, उसका क्या असर हुआ कि थोड़ा थोड़ा हम लोग सुने। नंद बाबा कभी संदेश दिए और उसको भी हम लोग सुने, लेकिन एक चीज और है कि उद्धव जी कुछ हम लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। वो संदेश क्या है कि ब्रज में आने पर उनकी स्थिति बदल गई। जो प्रारंभ में सुने होंगे तो तर्क कर रहे थे, कृष्ण पर आक्षेप कर रहे थे, लेकिन अब गोपियों के सानिध्य से उनके भावना में परिवर्तन हो गया, यह प्रभाव आया। तो अपने चरित्र से, अपने आचरण से एक संदेश दे रहे हैं कि हम भक्ति की भावना भरना चाहते हैं तो वृंदावन में आना चाहिए, और जो उन्नत भक्त हैं उनका संग करना चाहिए। ये भक्ति के भी परमाणु का विकिरण होता है, और जब तक उन्नत भक्तों का संग नहीं करते हैं तब तक कृष्ण के रस का आस्वादन नहीं कर पाते। एक श्लोक है संभवतः जीव गोस्वामी का है कि अनाराध्य राधा पदां भोज जुग्म, कह रहे हैं कि बिना राधा रानी के चरण जुगल का आश्रय लिए और असंवास्य वृंदाटवी तत्पदां का, और जो राधा रानी के चरणों से अंकित है उस वन वृंदावन में बिना वास किए, और असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता, और राधा रानी के भाव से भरा हुआ जिसका हृदय है तो उस व्यक्ति से बात किए बिना, उनके नजदीक बैठे बिना, कुतः श्याम सिंदूर रसस्यावगा, कैसे श्याम सुंदर रूप समुद्र के रस का अवगाहन कर सकते। तो कृष्ण के रस का अवगाहन करना है, उसको प्राप्त करना है, तो वृंदावन, राधा रानी का आश्रय, वृंदावन वास, और जो उन्नत भक्त है उनका संग, यह आवश्यक। गोपियों के संग से, ब्रजवासियों के संग से उद्धव जी में बहुत भारी परिवर्तन आ गया, आकाश पाताल का परिवर्तन आ गया। तो होता है भक्ति के परमाणु फैलते हैं, वो रेडिएशन का असर हो जाता है। तो इसी से उन्नत भक्तों के संग में रहना चाहिए, केवल रेडिएशन ही नहीं होता है कभी कभी तो सीधे प्रतिबिंब चला जाता है, कभी कभी उसका डायरेक्ट छाया पड़ता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरे के संदेश का क्या असर हुआ, उससे अधिक महत्वपूर्ण हम लोगों को संदेश है कि उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए, उसका प्रभाव जरूर आएगा। और इस प्रकार उद्धव संदेश टॉपिक दे करके हमारा बहुत भारी उपकार लोग किए। अब पार्थसारथी फाउंडेशन क्या है हमको तो कुछ है जानकारी नहीं है, लेकिन हरिलीला प्रभु इसको कोऑर्डिनेट किए, तो हमको 6 दिन तक ब्रजवासियों के भावना का स्मरण करने का अवसर मिला, इसके लिए हम आभारी हैं। हरे कृष्ण।